बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अली अब्बास। आज का हमारा मौजू है नज़र बदर और आप देख रहे हैं आओ बात करें। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज शाह साहब, इनसे बात करते हैं कि नज़र कैसे लगती है, क्यों लगती है, क्या मोहब्बत से भी नज़र लग जाती है या बद ही नज़र लगती है। तो आइए शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
शाह साहब, एक ना आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक शादी वायरल है अंबानी की, जो इंडिया में हुई। अच्छा, उसके साथ साथ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर हम अपनी कोई अचीवमेंट्स फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, या आप लोग, आपने अक्सर सुना होगा आप ख़ानदान में ये बात करते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो ना बताएँ, अगर गाड़ी ले ली है तो वो ना दिखाएँ, अगर बड़ा घर ले लिया तो वो लोगों को ना बताएँ, नज़र लग जाती है। अच्छा, आजकल वो सब लोग ये पूछते हैं, ये अंबानीज़ जो हैं, ये जो बिल गेट्स है, ये जो मार्क ज़करबर्ग है, इनके इतने इतने बड़े वेंचर्स हैं, जो हर रोज़ ये अपने वेंचर्स के बारे में आके बता रहे होते हैं, इनको तो नज़रें नहीं लगती, ये नज़रें सिर्फ हमारे लिए हैं, ये इस बरे सगीर के लिए रह गई हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो नज़र बद की बात है, ये तो बरहक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में भी इसका जिक्र है नज़र बद का। लेकिन जिस रफ्तार से हम ये बात कहते हैं, अगर आपकी पब्लिक डीलिंग है तो जो लोग आपके मिलेंगे
जी,
उसमें 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि साहब हम पे जादू हुआ है
जी,
हम पे ताबीज़ हुआ है, हम पे नज़र बद है। इसका ऑब्सेशन हो गया हमें,
ऑब्सेशन हो गया।
इसी तरह हमारे यहाँ एक और मसला बन रहा है, बन गया बल्कि बहुत ज़्यादा, ख्वाब देखकर हम मारे मारे फिरते हैं कि किसी को ख्वाब सुनाएं और उसकी ताबीर हमें
जी
सुनने को मिल जाए। इंसानी फितरत अपनी जगह है, इंसान के डर और ख्वाब फितरी हैं
जी,
उनसे इनकार नहीं। लेकिन रब ताला ने जितनी क़ुव्वतें अता फरमाई हैं इंसान को, उसके जहन में जो जो क़ुव्वतें पिन्हा हैं, उनसे काम लेके हम अपनी ऐसी इस्तरारी कैफियत पर काबू भी पा सकते हैं। सेल्फ सजेशन के ज़रिए अपनी जो साइकोलॉजिकल हालत है उसको ख़ुद बेहतर कर सकते हैं। कुछ हरकतें इंसान की जबिल्ली होती हैं, धमाका सुन के एकदम आप डर जाएंगे,
खौफ से डर जाते हैं जी,
वो बाय इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन इंसान के जहन में इतनी क़ुव्वत है कि ऐसी जो जबिल्ली हरकत हैं उन पे भी काबू पा लेता है। तो हम बजाय इसके कि ख्वाब देख लें तो मारे मारे फिरें, लोगों से पूछें कि इसकी ताबीर क्या है, और मज़े की बात यह है कि हम बग़ैर ये जाने कि इस आदमी को ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म भी हासिल है या नहीं है। चाहे कोई इल्म ताबीर से कितना ही बेबहरा हो, हम ख्वाब सुनाते हैं। फिर ख्वाब सुनाने के जो टाइमिंग हैं
जी जी,
उनका ख्याल नहीं करते। नतीजा ये है कि बहुत से ख्वाब हम ज़ाया कर लेते हैं अपने। इसी तरह ये नज़र बद के बारे में भी, हालांकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस
जी
होता ये है कि जो हमारी अपनी प्लानिंग है वो फॉल्टी होती है।
ओके,
बेतदबीरी को ज़्यादा दखल होता है हमारे यहाँ, हिकमत से काम नहीं ले रहे होते, उन चीज़ों से पिटते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि नज़र बद तो है, ये जो आपने कहा कि अंबानी या इसी तरह दूसरे टाटा वगैरह है उनके,
जी जी,
अंबानी ख़ास तौर पे इनके यहाँ अपनी अमारत का इजहार होता रहता है
जी जी।
इससे पहले इन्होंने गर्लफ्रेंड बेटी की शादी की थी, उसमें भी दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी शादी, वो अब इनकी जो शादी है उसके 15 दिन पहले से ये तकरीबात चल रही हैं
जी।
ایک بار آپ سے کسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ قرآن بھی کہتا ہے, اس کا لفظی ترجمہ نہیں کہہ رہا میں, مفہوم کہہ رہا ہوں
جی,
کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں, تو اچھے برے دن سب پر آتے رہتے ہیں, لیکن فرق ایک ہے کہ ایک دولت مند آدمی ہے, اس پر جب برے دن آتے ہیں تو مالی جو ہٹ ہے وہ اس کو اتنی محسوس نہیں ہوتی کہ وہاں دولت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہٹ اس میں ابزارب ہو جاتی ہے. مجھ جیسے غریب آدمی پہ جب برا وقت آئے گا اور فائنینشیل ہٹ آتی ہے تو مجھے بہت پنچ کرے گی کہ میرے پیچھے بیک اپ میں کوئی بہت زیادہ دولت نہیں ہے. تو امبانی پر بھی برا وقت آیا ہوا ہے, اور اتفاق ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد سے ہی اس کا لاسز ہونے شروع ہو گئے. ایک ہی پروجیکٹ میں تقریباً ایز پر نیوز پیپرس 100 بلین ڈالرز کی ہٹ آ گئی اسے,
صحیح,
لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ 100 بلین ڈالرز کا لاس بھی ابزارب ہو گیا.
صحیح,
ایسے لوگوں کے بارے میں تو اب اس سے اگرچہ اس کا نظر بد سے یا جادو یا تعویذ سے کوئی تعلق نہیں ہے,
جی,
بے تدبیری سے تعلق ہے.
جی جی,
پریپارٹیشن ڈیز میں یونائٹڈ انڈیا میں ٹاٹا اور برلا, یہ دو بڑے مشہور لوگ تھے پیسے کے لحاظ سے. برلا کو گیملنگ کی عادت تھی, تو وہ دو بار زندگی میں بینکرپٹ ہو گیا گیملنگ کے ہاتھوں. جب آخری بار بینکرپٹ ہوا ہے تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے پاس آفس کی جگہ نہیں تھی, تو اپنے دوست ٹاٹا کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک کمرہ اپنے ہیڈ کوارٹر بلڈنگ میں دے دو تاکہ میں وہاں بیٹھ کے کام کر لوں. تو دے دیا اس نے, محنت کی, محنت تو کرنا جانتا تھا, کھڑا ہو گیا. پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر بلڈنگ پہلے کی طرح بنا لی, لیکن وہ کمرہ نہیں چھوڑا. ٹاٹا کی ڈیتھ ہو گئی, سینئر ٹاٹا جو تھے, تو ان کے بیٹے آ گئے پاور میں. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پرانی بلڈنگ ہے, اس کی جگہ ہم نئی بلڈنگ بنائیں.
جی,
اب وہ برلا نے تالا لگایا ہوا تھا اس ایک کمرے کو جس میں اس کا آفس تھا.
جی,
تو اپروچ کیا گیا اور ان سے کہا کہ جی ہم بلڈنگ گرا کے نیا ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم بلڈنگ میرے ہاتھ بھیج دو, دوسری جگہ جا کے ہیڈ کوارٹر بنا لو, لیکن کمرہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں اس سے ہی بناؤں دوبارہ.
صحیح,
وہ خیر بعد میں فیصلہ ہو گیا, عین اسی مقام پر اسی جگہ پر اس کا کمرہ نئے ہیڈ کوارٹر بلڈنگ میں بھی.
اوکے,
وہ پرانے لوگ تھے, وزادار لوگ, بھرم قائم رکھتے تھے ان باتوں کا, لیکن اس کے بینکرپٹ ہونے میں نظر کو دخل نہیں تھا, اس کی اپنی حرکتوں کو دخل تھا.
صحیح,
لیکن ہمت والا آدمی تھا, سمجھدار تھا, گر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا رہا. تو ابھی تو ٹاٹا اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیفنس ہارڈ ویئر پروڈکشن میں چلے گئے ہیں, تو وہ اپنی آرمی کے لیے وہ بڑے ہیوی ٹرکس بھی بناتے ہیں, کرینز بناتے ہیں,
جی,
اے پی سیز بنا رہے تھے, اب وہ فائٹر ایئرکرافٹ میں جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نظر بد برحق اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن انسان کی تدبیر, اس کی قابلیت, اس کی محنت, اس کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی ہے, اس کا استعمال, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے.
شاہ صاحب, اکثر دیکھا گیا ہے لوگ نا لڈو جو ہے وہ اس کے نیچے کوئی چیز لکھ کے تو درباروں پہ رکھ دیتے ہیں. میں نے تو بلکہ ابھی یورپ میں بھی یہ رواج دیکھا ہے کہ وہاں پہ تالا لگا کے چابی جو ہے وہ سمندر میں یا
دریا پانی میں پھینک دیتے,
پانی میں پھینک دیتے ہیں. تو اس سے کوئی تعلق ہے, انسان سے نظر ختم ہو جائے یا اس کے اوپر جو کوئی چیز اسیب ہے یا وہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے؟
اس میں بحثیت مسلمان تو میں اس کو بالکل نہیں مانتا. مزار پہ جائیے لیکن فاتح خانی کے لیے.
جی,
قرآن پاک پڑھیے, فاتح خانی کیجیے, ملحقہ مسجد میں نوافل پڑھیے, وہ ٹھیک ہے, بالکل ضرور جائیے. لیکن اس طرح کی منتیں ماننا، سجدہ کرنا
جی،
اس طرح کے دھاگے باندھ کے چلے آنا
جی،
تالے باندھ کے چلے آنا، یہ شاید میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ اسٹرانگ ویو نہیں رکھتا، اسٹرانگلی فیوریبل ویوز نہیں رکھتا. میرا تو ایک سیدھا سیدھا اس میں خیال یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں
جی.
مجھے کہیں ایسی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کے پاس جاؤں اور جا کے کہوں کہ علی عباس صاحب میری سفارش کر دیجیے. وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تو اتنا مہربان ہے
جی
کہ وہ لوگ جو اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، وہ رب ہے. جب وہ پالتا ہے تو اس میں تشخیص کہیں نہیں ہے کہ کون رب کا ماننے والا، کون رب کا کے ساتھ شرک کرنے والا، یا رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور اس کو عبادت گزار. وہ سب کو پالتا ہے، پالنہار ہے. وہ ضرورتیں سب کی پوری کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. تو جب میرا رب اتنا مہربان ہے تو میں بجائے کہیں جا کے علی عباس صاحب کے پاس وقت ضائع کروں کہ علی عباس صاحب میری سفارش کر دیجیے، سیدھا اپنے رب سے رجوع کروں
صحیح
کہ یا باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوں، یہ میرا مدعا ہے، اس کو پورا کر دے. اور وہ کر دیتا ہے.
جیسا 2 کروڑ کی گاڑی ہو رہی ہے، ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ 200 روپے کی جوتی جو ہے نا وہ لوگوں نے لٹکائی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بیشتر گاڑیوں میں دیکھا ہے، آپ اگر روڈ پہ کھڑے ہو جائے، میں نے ایک دفعہ نا کاؤنٹ کیا شاہ صاحب، تو وہ تقریباً 50% گاڑیوں کے پیچھے میں نے وہ جوتی لٹکی ہوئی دیکھی. اب گاڑی 2 کروڑ کی ہے اور اس 2 کروڑ کی گاڑی کی حفاظت 200 روپے کی جوتی کر رہی ہے.
نہیں، کالا کپڑا بھی بندہ ہوتا،
کالا کپڑا بھی ہوتا ہے جی.
یہ قصور ہمارا نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ کلیتاً قصور ہمارا ہے، وہ بھی درست نہیں ہوگا. یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے یہ چیزیں در آئی تھیں ہمارے اندر.
ٹھیک ہے،
شگون لینا
جی،
اس طرح کی چیزیں باندھنا، لٹکانا گھر کے باہر، گھوڑے کی نال
جی
وہ لگی ہوئی دیکھی ہوگی آپ نے. یہ ہم نے وہاں سے لی، ایک ہی جگہ رہتے تھے، میجورٹی ہندو کی تھی
جی،
تو اثر آنا لازمی تھا ہمارے اوپر. وہ اثر آیا، پر اللہ نے ہمیں ملک دے دیا جہاں ہم آزادی سے رہ سکے. لیکن یہاں انہوں نے ایک کلچرل یرغار کر دی ہمارے اوپر اور ان کے ڈرامے، فلمیں اتنی زیادہ اسٹرانگ میڈیا تھیں
جی
کہ ان کے اثرات ہم پر آ گئے. ہم گراؤنڈ اپنی چھوڑتے چلے آئے، ہماری فلمیں تعداد میں کم ہوتی گئیں. تو یہ وہاں کا اثر ہے، ورنہ اس بیچاری جوتی نے کیا کرنا ہے سوائے اس کے کہ جو گاڑی آپ کے پیچھے آ رہی ہے
جی جی،
آپ اس کے لیے ڈس ریسپیکٹ فل ہو رہے ہیں.
بالکل،
اس کو جوتا دکھا رہے ہیں،
صحیح بات ہے،
لٹکا ہوا. تو وہ جوتا بیچارہ کیا کرے گا، یہ تو رب ہے جو سب کچھ کرتا ہے.
اچھا، آپ نے ویسے یہ غور کیا ہے شاہ صاحب کہ یہ جو توہمات ہیں اور یہ جو نظر بد کے دماغ میں یہ کانسیپٹ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں بہت عرصے سے، اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا لوگ جو آج سے 50 سال پہلے جو سوچ تھے وہی آج ہے لوگوں کی؟
دیکھیے، کچھ چیزوں میں بہت بہتری آئی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. لیکن یہ جو تعویذ دھاگا ہے
جی جی،
عملیات ہیں، نظر بد کا خیال ہے، اور تو اور خوابوں نے مارا ہے
جی.
وہ بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ ہم خوابوں کی ماری قوم ہیں. یہ چیز بہت در آئی ہے ہمارے اندر، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے.
ٹھیک
ہے، اس لیے کہ قومیں سفر طے کر رہی ہوتی ہیں، تو جیسے آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو کہیں ٹرین کے ارد گرد لہلہاتے کھیت آ جائیں گے، کہیں آبادی آ جائے گی، کہیں दरिया क्रॉस करेंगे आप, कहीं रेगिस्तान होगा, कहीं जंगल होगा, सीन बदलते रहते हैं सफ़र के दौरान। इसी तरह जब कौमें, जो कौमें जिंदा कौमें हैं, उनका सफ़र जारी रहता है, तो उसमें माशरे में ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसलिए ज़्यादा शिद्दत से कभी मैं इन्हें कंडेम नहीं करता। वो तो आपने मुझसे मेरी राय पूछ ली तो मैंने आपको राय बता दी।
जी जी,
कंडेम उस तरीके से मैं नहीं करता, इसलिए मुझे पता है कि इंसान है हम सब
जी,
ये कमज़ोरियाँ लगी हुई हैं हमारे साथ। इन कमज़ोरियों को हम बड़े इनडायरेक्ट वे में, बहुत ही लाइट तरीके से बात करके, कहानियाँ सुना के इनको हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकते हैं। शिद्दत के साथ, डंडे के साथ दूर नहीं होंगी, ये दूर होंगी तो इसी तरीके से होंगी।
शाह साहब, जो लोग आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेके, वो आते ही आपसे ये डायरेक्ट जुमला कह देते होंगे कि मुझ पे जी जादू हो गया, ये नज़र बद मुझे हो गई है
जी,
तो आप फिर उनको कैसे गाइड करते हैं? और आपके ख्याल से कितने परसेंट ऐसे लोग आते हैं जिनको वाकई कोई नज़र बद जिन पे हुई होती है?
नहीं, बहुत कम परसेंटेज है, उसको शायद फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंटेज में भी हम नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे।
ठीक है,
ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपसे मिलने वाला 90% लोग यही कहेंगे कि साहब बुरा वक्त आ गया
जी,
हम एक ज़िंदगी की एक लीन पैच से गुजर रहे हैं
जी,
तो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक जब मैं लीन पैच से गुज़रता हूँ तो मैं अपने आप को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं उस इल्ज़ाम को पास ऑन करने के रीजंस ढूंढूंगा कि किसी पर शिफ्ट कर दूँ।
सही,
मेरा कसूर तो हो नहीं सकता। अभी दो चार रोज़ पहले एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे तो उन्होंने यही बात कही, वो लीन पैच से गुजर रहे थे ज़िंदगी के, तो मैंने उनसे पूछा कि हजूर कुछ ऐसा पहले तक आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त आपकी मेहनत नहीं थी, वो नज़रें नेक थी, तो अब चूंकि हालात बदल गए हैं आपके तो फिर नज़रें बदल हैं, तो या तो उसका क्रेडिट किसी को दे दीजिए कि वो नज़रें नेक थी,
हाँ,
तो इसका इल्ज़ाम धर देते हैं हम किसी पर। अगर वो आपकी मेहनत का नतीजा था तो फिर मान लीजिए कि ये आपकी बेतदबीरी के नतीजे में हुआ, या फिर रब के फरमान को ले लीजिए कि लोगों के दरमियान दिन फिरते रहते हैं, अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, तो अगर अच्छा वक्त मैंने हंस खेल के गुजारा है तो जो लीन पैच है ज़िंदगी का, मैं उसको भी उसी हौसले से गुजार लूँ हंसते हुए।
अच्छा शास्त्री, बड़ी अच्छी आपने नई न्यू टर्म यूज़ की है, नज़रें नेक, ये मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अच्छा, वैसे मैं भी सोच में पड़ गया, जब इंसान के हालात अच्छे होते हैं, वो बेहतर सेहत पे होता है, इंजॉय कर रहा होता है ज़िंदगी को, वो कभी भी ये नहीं कहता कि नज़रें नेक लगी है मुझे।
हम क्रेडिट नहीं देते, उसका क्रेडिट खुद लेते हैं,
हाँ,
कि मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत, मेरी तदबीर,
बिल्कुल
मेरी हिकमत,
हाँ,
उसके नतीजे में ये सब आ रहा है,
हाँ।
लेकिन जब सूरत हाल इससे ज़रा सी मुख्तलिफ हो जाए तो फिर हम उसका ब्लेम शिफ्ट करने के लिए चीज़ें ढूंढते हैं, नज़र बद है, किसी ने तावीज़ करा दिए हैं, किसी ने जादू करा दिया, अमलियात हैं, तो हम वो ढूंढते हैं।
जैसे एक जुमला बहुत बोला जाता है कि जो नज़र होती है ये पत्थर चीर देती है, कभी ऐसा ये कभी फिजिकल भी हुआ है कभी जिंदगी में, या ये सिर्फ मुहावरा
है? जाता है, होता है, मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़र बद बरहक है, हो जाता है, लेकिन उसका हल मौजूद है। उसका हल ये नहीं है कि मैं ये किसी से कहूँ कि ये 7 मिर्चें पकड़ो और मेरे सर पर से घुमा
जी जी
तवे पे डाल दो तो शक्ल निकल आएगी किसकी नज़र बद थी,
हाँ बिल्कुल,
वो हल नहीं है, वो तो सब अमलियात हैं।
ये मुर्गी जो है वो गर्दन उसकी काट के लाके फिर सर से वार के फिर आप किसी को,
वो नहीं है, वो हल नहीं है, उसका हल है
जी
रब ताला से रहम मांगा जाए, उससे रिक्वेस्ट की जाए, फिर सूरह इखलास है, बल्कि चारों कुल है,
चारों कुल
उनको पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए, अल्लाह के कलाम में ताकत है।
सही। अच्छा, कहते हैं कि जो माँ है जब वो अपने बच्चे को बड़ी खूबसूरत से देखे या बड़ी चाह से देखे तो उसको भी नज़र लग जाती है बच्चे को।
लग जाती है, लेकिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना हम कहते हैं।
अच्छा, इसके कुछ असरात बता सकते हैं आप, जिनको वाकई नज़र बद लगती है तो उसके उनको क्या असरात होते हैं, वो क्या फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, उनमें क्या तब्दीली आती है?
वो मुख्तलिफ तरीके से उसका इजहार हो जाएगा। नामालूम सा डिप्रेशन आ जाएगा,
डिप्रेशन हो जाता है,
कुछ समझ नहीं आती हो क्या गया है, चलते हुए काम सडनली एकदम रुक जाएंगे। सदका और खैरात इसका तोड़ है बड़ा बड़ा अच्छा। तो ऐसी सूरत में रब से मदद भी मांगिए और सदका खैरात भी कीजिए।
सदका खैरात, ठीक है,
टूट जाएगी।
अच्छा, इसमें शाह साहब ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो परेशान होते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती, वो नींद ना आने की वजह से जो डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप अगर एक रात को नहीं सोएंगे या तीन चार रातें नहीं सोएंगे तो आपका तो पूरा बॉडी का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है,
वो चीज़ें और ख़राब होती चली जाती हैं, इसलिए कि फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते काम पर। जब अपने काम पर आप तवज्जो नहीं दे पाते तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। ये जब इंसान के जहन में सोचों की आंधियाँ चल रही होती हैं, सोचें तो हर एक को आती हैं लेकिन सोचों की आंधी चलने लग जाए दिमाग में तो फिर नींद नहीं आती है। उसका बेहतरीन हल ये कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें, सुकून आ जाएगा इंसान को।
अच्छा, कुरान पाक की तिलावत, तो मैं ये चाहूँगा जो गैर मुस्लिम हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको भी हम गाइड करते जाएँ साथ साथ, कुरान पाक की तिलावत तो मुस्लिम्स करेंगे ना, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्या करें?
उनकी अपनी जो मुकद्दस किताबें हैं उनकी तलावत, उनकी रेसिटेशन शुरू कर दें।
अच्छा शाह साहब, ऐसा भी होता है कि आप जब इस तरह डिप्रेशन में हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं नज़र बद में हूँ तो आप मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारें या कहीं दरबार में चले जाएँ? अमूमन ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि ये इस दरबार पर चले जाएँगे तो आपको ये नज़र जो है वो तोड़ हो जाएगा या ये नज़र बद है या आपको दुआ लग जाएगी बुज़ुर्गों की और उससे आप बेहतर हो जाएंगे, तो क्या इससे भी बेहतरी आती है?
इंसानी फितरत में एक चीज़ है, कितने ही मजबूत इंसान क्यों ना हो
जी,
उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो जब हम कहीं नेक आदमी के यहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं अगर वो जिंदा है, मज़ार है, वहाँ फातिहा पढ़ते हैं
जी,
हमें एक एहसास होता है कि हम अपना सारा बोझ गठरी में बांध के वहाँ छोड़ आए। नतीजा ये है कि हल्के फुल्के होके आ जाएंगे। जब हल्के फुल्के होके आएंगे तो फिर काम पर तवज्जो देंगे, उस मसले का हल निकल आएगा, तो क्रेडिट हम पास ऑन कर देंगे ऐसे आदमी को जिसके पास होके आए थे। दरहकीकत होता ही है कि दिल ज़हनी सुकून आ गया
जी,
दिल की तसल्ली हो गई,
सही,
बोझ हट गया, मैं सोचने के काबिल हो गया। तो जो ही मैंने मेरी सोच बेहतर हुई,
सही,
मुझे मुसीबतों के हल नज़र आने शुरू हुए। तो ये एक फितरी अमर है, सपोर्ट चाहिए हमें, सहारा एक चाहिए, जो लाठी है हाथ में वो होनी चाहिए जिसके सहारे हम खड़े हो जाएं।
अच्छा, ये मुझे आपकी बात से ये अंदाज़ा हुआ है कि ये मज़हब से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल गेम है कि आपने किस तरह से अपने अपने माइंड को समझाना है और ये कहना है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उसको सुनाई हैं, वो मुझे हल बताएगा।
नहीं, शायद ये 100% तो ऐसा ना हो। मज़हब बहुत ज़रूरी है, अपने रब पर ईमान बड़ा ज़रूरी है, और ईमान के साथ साथ उस पर भरोसा होना बड़ा ज़रूरी है। और ये भरोसा पैदा हो जाता है, हर आदमी में हो जाएगा, जिस तरह हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते हैं
जी जी,
तो हम हिस्टोरिकल फिगर्स को देखते हैं, उस पर बेस करके हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में देखें तो बेशुमार अनगिनत
जी
मौके हमें नज़र आएंगे ज़िंदगी में, छोटे छोटे भी, बड़े भी, कि कब कब हम बिल्कुल मायूस हो गए कि ये काम नहीं होना, सडनली आउट ऑफ ब्लू
जी जी जी
मदद आ गई और वो
बिल्कुल
काम हो
बिल्कुल
गया।
ऐसा होता है,
मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी, मैं पूरी तरह मायूस हो गया
जी,
आउट ऑफ ब्लू कोई साहब आए और उनके जेब से मेरी ज़रूरत पूरी हो गई।
बिल्कुल,
ये जब देखता है तो आदमी कहता है कि मेरे रब है। मैं एक बुज़ुर्ग उनके पास बैठा करता था, तो एक साहब ने कुछ उनके साथ भलाई की होगी
जी,
तो मैंने अप्रिशिएट करते हुए कहा कि साहब उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने आपको इस तरह लुक आफ्टर कर लिया। तो ये नहीं कि एहसान नाशनासी थी, वो मुझे सबक देने के लिए कि उन्होंने कहा कि मियाँ इंसान किसी के लिए कहाँ करता है, ये तो रब है जो उसके दिल में डालता है कि मेरे इस बंदे के लिए ये कर दो।
सही सही,
तो वो बंदा काम कर देता। तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके अनगिनत आते हैं, हम उनको देखते हैं, तो फिर ये भरोसा होने लगता है कि जो रब इतनी लंबी ज़िंदगी में मुझे लुक आफ्टर करता रहा वो आइंदा भी करेगा। तो ये एक भरोसा उस पर पैदा हो गया, फिर ये भरोसा कॉन्क्रीट होने लगता है।
ठीक,
और एक वक्त आता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता कोई और बात, मुश्किल आ गई, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, मेरा रब बैठा है वो कर लेगा,
संभाल लेगा,
वो भरोसा यहाँ तक चला जाता है।
बिल्कुल सही शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपने ये सारी गुफ्तगु सुनी और इसमें जो न्यू एक टर्म जो ईजाद हुई आज, वो थी नज़र नेक। तो जब आपके साथ कोई अच्छा हो रहा हो, जब आपके साथ कामयाबियाँ आपके कदम चूम रही हो, तो उसका भी क्रेडिट आप नज़र नेक को दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।